कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है।
बिल्कुल, एक बहुत ही खौफनाक स्थिति।
हाँ एकदम, एक हिंसक भीड़ उसके खून की प्यासी है और वो रातों रात छिपते छिपाते एक बिल्कुल अजनबी शहर में पहुंचता है।
और वो भी कोई ऐसा वैसा शहर नहीं।
सही कहा, ये उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ के लोग खुद को सबसे चतुर और ज्ञानी मानते हैं।
ज्ञान का ऊर कह सकते हैं इसे।
बिल्कुल, और इस भागे हुए व्यक्ति को अब उन अहंकारी विचारकों के सामने एक ऐसा विचार पेश करना है जो उनके लिए पूरी तरह से बेतुका है, एकदम परग्रही,
मतलब उनके विश्व दृष्टिकोण से बिल्कुल मेल नहीं खाता।
हाँ, अक्सर जब हम संवाद या मतलब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक शांत मीटिंग रूम आता है
जहां सब आराम से बैठकर बात कर रहे हो।
हाँ, लेकिन जब दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं आपस में टकराती हैं तो वो स्थिति
किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती।
एकदम सही, और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का केंद्र बिंदु ठीक यही है। आज हम डॉक्टर क्रेग कीनर के ऐतिहासिक शोध पर आधारित स्रोत सामग्री की गहराई में जा रहे हैं।
ये शोध प्राचीन ग्रीस में पॉल नाम के एक शुरुआती ईसाई प्रचारक की यात्राओं का बहुत ही सजीव विवरण देता है।
हाँ, तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि जब प्राचीन यहूदी विचारधारा और अत्यंत परिष्कृत ग्रीक दर्शन आमने सामने आते हैं तो एक पुल कैसे बनाया जाता है।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक घटना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये असल में कंटेक्सचुअलाइजेशन का एक बेजोड़ मास्टर क्लास है, मतलब अपने सत्य को बिना बदले उसे दूसरों के नजरिए से समझाने की कला।
हाँ, और इस पूरी कला को समझने के लिए हमें उस समय के जमीनी हालात में जाना होगा। ये कहानी किसी खालीपन में नहीं घट रही थी।
चलिए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक भयंकर संकट से होती है। पॉल थेसालोनिका नाम के शहर में था
जहां उसके खिलाफ एक हिंसक दंगा भड़क उठा था।
ऐतिहासिक विवरण ये है कि पॉल ने वाया इग्नाटिया को छोड़ दिया।
हाँ, और वाया इग्नाटिया को छोड़ना मतलब कोई छोटी बात नहीं थी।
थोड़ा समझाएंगे इसे।
बिल्कुल, रोमन साम्राज्य में वाया इग्नाटिया एक विशाल मुख्य राजमार्ग था, एकदम पत्थरों से पक्का किया हुआ,
मतलब उस समय का एक्सप्रेसवे।
हाँ एकदम, ये सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों की रीढ़ था। इस पर यात्रा करना सुरक्षित और तेज था, लेकिन अगर कोई हिंसक भीड़ किसी का पीछा कर रही है
तो जाहिर है वे सबसे पहले इसी मुख्य सड़क पर घोड़ों और रथों के साथ दौड़ेंगे।
बिल्कुल सही, इसलिए पॉल ने जानबूझकर इस सुरक्षित राजमार्ग को छोड़कर दक्षिणी पहाड़ों के ऊबड़ खबड़ और अनजान रास्तों को चुना।
ये एक विशुद्ध सर्वाइवल रणनीति थी, जान बचाने की कोशिश।
हाँ, और इन्हीं दुर्गम रास्तों से होकर वो बेरिया पहुंचता है।
और बेरिया के लोगों के बारे में स्रोतों में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें महान या नोबल कहा गया है।
और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे अच्छे लोग थे।
हाँ, ये उनके सोचने के तरीके के कारण था। वे पॉल की किसी भी नई बात को यूं ही नहीं मान लेते थे।
उस कालखंड में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। बेरिया के लोग कोई अंधविश्वासी श्रोता नहीं थे।
मतलब वे आज के दौर के सबसे सख्त फैक्ट चेकर्स की तरह थे।
बिल्कुल, वे हर दिन टोरा और भविष्यवक्ताओं के प्राचीन स्क्रॉल्स खोलते थे और तथ्यों की जांच करते थे।
जरा सोचिए, उस समय गूगल नहीं था, उन्हें चमड़े के भारी भरकम स्क्रॉल को खोलकर बिना किसी चैप्टर नंबर के सही पैराग्राफ ढूंढना पड़ता था।
इसमें घंटों लगते होंगे। ये दिखाता है कि वे सत्य के प्रति कितने गंभीर थे।
हाँ, लेकिन पॉल को ये बौद्धिक शांति ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुई। थेसलोनिका की उस भीड़ का गुस्सा इतना भयंकर था कि वो मीलों का सफर तय करके वहां भी पहुंच गए।
और ध्यान देने वाली बात यह है कि रोमन कानून के तहत ये पूरी तरह से गैर कानूनी था।
मतलब उनका वहां दंगा भड़काने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
बिल्कुल नहीं, उनका अधिकार क्षेत्र वहीं खत्म हो जाता था।
लेकिन भीड़ का कोई कानून नहीं होता। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पॉल को बचाने के लिए सीधे समुद्र की ओर ले जाना पड़ा।
और अब यहाँ से दृश्य एकदम सिनेमैटिक हो जाता है।
हाँ, पॉल समुद्र के रास्ते एथेंस के बंदरगाह पिरास पहुंच रहा है। दूसरी शताब्दी के भूगोल वेत्ता पॉसानियस के वृत्तांत बताते हैं कि जैसे ही कोई जहाज एथेंस के करीब पहुंचता था,
मीलों दूर से ही एक्रोपोलिस की पहाड़ी पर बनी एथेना देवी की विशाल मूर्ति दिखाई देने लगती थी।
हाँ हाँ, उसके भाले की चमक। और जब पॉल शहर में कदम रखता है तो वो सचमुच मूर्तियों के एक जंगल में खो जाता है। हर तरफ वेदियां और मूर्तियां।
अब देखिए, एथेंस के उस दृश्य का एक यहूदी व्यक्ति के दिमाग पर जो असर हुआ होगा वो बहुत गहरा था।
जाहिर है, एथेंस वासी इन्हें अपनी कला मानते थे।
लेकिन पॉल एक सख्त एकेश्वरवादी यहूदी पृष्ठभूमि से था। उसके लिए यह सिर्फ कला नहीं थी। यहूदी विश्व दृष्टिकोण में माना जाता था कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है। इसलिए जब इंसान खुद पत्थर को तराश कर उसे भगवान का रूप देता है तो यह ब्रह्मांड के मूल क्रम का अपमान है। निर्जीव वस्तुओं की पूजा को वे मूर्खता मानते थे।
यही कारण है कि पॉल अंदर तक विचलित हो गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है।
बताइए।
अगर एथेंस इतना ही बौद्धिक शहर था तो वहां हर कोने पर मूर्तियां क्यों थीं? दर्शन शास्त्र और गली गली में मूर्ति पूजा, क्या ये एक विरोधाभास नहीं है?
यहां जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उस समय के ज्यादातर उच्च स्तरीय दार्शनिक खुद इन मूर्तियों पर विश्वास नहीं करते थे।
अच्छा, मतलब वे अंदर से नास्तिक या संशयवादी थे?
हाँ, अपनी बैठकों में वो इन बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से नष्ट करने के पक्ष में भी नहीं थे।
ऐसा क्यों?
प्लेटो जैसे विचारकों का तर्क था कि आम जनता दर्शन शास्त्र की गहराइयों को नहीं समझ सकती, इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए धर्म एक उपयोगी टूल है।
ओहो, मतलब एक तरह का नोबल लाए या आवश्यक भ्रम। ये बहुत ही व्यवहारिक लेकिन अंदर से खोखली व्यवस्था लगती है।
बिल्कुल। और वैसे भी एथेंस शहर अब अपने पुराने गौरव की परछाई मात्र रह गया था। इसे फ्री सिटी का दर्जा तो था लेकिन शिक्षा में ये अलेक्जेंड्रिया और टार्सस से पिछड़ चुका था।
फिर भी उनका बौद्धिक अहंकार कम नहीं हुआ था।
एकदम सही। एथेंस का बाजार, जिसे अगोरा कहा जाता था, वो विचारों का एक अखाड़ा था।
और वहीं पॉल का सामना दो सबसे शक्तिशाली दार्शनिक गुटों से होता है, एपिक्यूरियन और स्टोइक्स।
हाँ, इन दोनों गुटों के बारे में श्रोत बहुत दिलचस्प जानकारी देते हैं।
हाँ, एपिक्यूरियन दार्शनिकों को एक प्रकार का डिडिस्ट कहा गया है। क्या हम इस डिडिस्ट विचारधारा को थोड़ा समझ सकते हैं?
हाँ, इसे एक घड़ी सास के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक घड़ी बनाने वाला पुर्जे जोड़ता है, चाबी भरता है और फिर दीवार पर टांग देता है।
वो हर सेकंड सुइयों को खुद नहीं घुमाता।
एकदम। एपिक्यूरियंस ऐसा ही सोचते थे। देवता अस्तित्व में हो सकते हैं लेकिन वे मानवीय मामलों से पूरी तरह दूर हैं। वे अपने आनंद में मग्न हैं।
तो मतलब उनके लिए जीवन का कोई ईश्वरीय उद्देश्य नहीं था। फिर उनका लक्ष्य क्या था?
उनका सर्वोच्च लक्ष्य था खुशी प्राप्त करना, लेकिन ऐन्द्रिक सुख नहीं। उनके लिए अटाराक्सिया यानी शरीर में दर्द ना होना और मन में उथल पुथल ना होना ही खुशी थी।
और वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि वे मानते थे कि मरने के बाद कुछ नहीं है।
और दूसरे छोर पर थे स्टोइक्स, जो जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय थे। उनके लिए ब्रह्मांड कोई बिना चाबी की घड़ी नहीं था।
हाँ, स्टोइक्स मानते थे कि ब्रह्मांड लोगोज यानी तर्क और फूसेस यानी प्रकृति से बना है। ये एक जीवित इकाई है।
और उनका ब्रह्मांड चक्रीय था।
सही कहा। सब कुछ आग में नष्ट होकर दोबारा बनता है। चूंकि इतिहास का कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, उनके लिए जीवन का अर्थ था सद्गुण के साथ जीना।
अब इस एगोरा में जब पॉल इन दोनों समूहों के बीच अपनी बात रखता है तो एक बहुत ही भयानक और हास्यास्पद गलतफहमी हो जाती है।
और ये गलतफहमी अनुवाद और सांस्कृतिक संदर्भ के टकराव के कारण हुई।
हाँ, पॉल यीशु और पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा था। पुनरुत्थान के लिए ग्रीक शब्द अनास्तासिस था।
और उन दार्शनिकों ने सोचा कि पॉल किसी नए नरदेवता यीशु और एक नई देवी अनास्तासिस की बात कर रहा है।
ये ऐसा है जैसे आप किसी दूसरे देश में नई तकनीक समझा रहे हो और वे उसका बिल्कुल अजीब मतलब निकाल लें।
बिल्कुल। और इसी अज्ञानता में उन्होंने पॉल के लिए एक बेहद अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, स्पर्मोलोगोस।
स्पर्मोलोगोस, जिसका मतलब है बाजार से दाने चुगने वाला पक्षी।
हाँ, ये उस समय का सबसे तीखा ताना था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर से अधकचरा ज्ञान मटोरकर खुद को ज्ञानी समझता हो।
लेकिन बात सिर्फ अपमान तक नहीं रुकी। वे पॉल को पकड़कर शहर की सर्वोच्च अदालत अरियोपेगस के सामने ले गए।
अरियोपेगस लगभग 100 सदस्यों वाली एक उच्च अदालत थी। यह एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरह काम करती थी।
और पॉल पर जो आरोप लगा वो था विदेशी देवताओं को पेश करना।
हाँ,
ये सुनते ही खौफनाक इतिहास याद आता है। सदियों पहले सुकरात पर भी ठीक यही आरोप लगा था और उसे मौत की सजा मिली थी।
बिल्कुल। श्रोत सामग्री जानबूझकर पॉल को एक नए सुकरात के रूप में पेश कर रही है। पॉल की जान दांव पर लगी थी।
यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कोई और होता तो डर कर माफी मांगने लगता
या आक्रामक हो जाता।
हाँ, लेकिन पॉल बचाव में आने के बजाय उनके ही साहित्य का उपयोग करके एक पुल बनाता है।
यह किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है।
इसे प्राचीन वक्तृत्व कला में एक्सॉर्डियम कहा जाता था, भाषण की वो शुरुआत जिसका उद्देश्य सद्भावना पैदा करना हो।
पॉल उनका अपमान नहीं करता, वो कहता है कि वे बहुत धार्मिक हैं, और फिर वो उस अज्ञात देवता की वेदी का जिक्र करता है। इस वेदी की कहानी एथेंस वासियों के खून में रची बसी थी। सदियों पहले एक महामारी आई थी।
हाँ, आप एपिमेनिडेस की वो कहानी बता रहे थे।
हाँ, क्रीट के एपिमेनिडेस को बुलाया गया था। उसने सलाह दी कि भीड़ों को छोड़ दो और जहां वे बैठे वहां अज्ञात देवता की वेदी बनाओ।
क्या अद्भुत रणनीति है पॉल की। वो उसी सांस्कृतिक स्मृति का इस्तेमाल करता है।
हाँ, वो कहता है कि जिस अज्ञात देवता को तुम पूज रहे हो, मैं उसी के बारे में बताने आया हूँ।
और फिर वो उनके स्टोइक दर्शन का इस्तेमाल करता है कि ईश्वर को हाथ से बने मंदिरों की जरूरत नहीं है,
जो कि ग्रीक विचार एप्रोसदीस से मेल खाता था। मतलब ईश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि पॉल को ये विचार स्टीफन के भाषण और यशाया से मिला था।
बिल्कुल, और वो उनके कवियों को उद्धृत करता है। उसी एपिमेनिडेस की पंक्ति, उसी में हम जीवित रहते हैं,
जिसके बारे में कहते हैं कि वो आधी जिंदगी सोता रहा था।
हाँ, रिप वैन विंकल की तरह। और फिर उसने अराटस को भी उद्धृत किया, हम उसी की संतान हैं।
ये साबित करता है कि पॉल स्पर्मोलोगोस नहीं था, उसने शानदार कॉमन ग्राउंड बना लिया था।
ये कंटेक्चुअलाइजेशन की जीत थी।
लेकिन इतनी शानदार शुरुआत के बाद एक ऐसा क्षण आता है जहां सब बिगड़ जाता है, टकराव का बिंदु।
पॉल अचानक उनके चक्रीय इतिहास पर प्रहार करता है। वो कहता है कि इतिहास एक सीधी में बढ़ रहा है और एक तय व्यक्ति दुनिया का न्याय करेगा।
और सबसे बड़ा विवाद तब होता है जब वो शारीरिक पुनरुत्थान की बात करता है।
ग्रीक दार्शनिकों के लिए शरीर एक मकबरा था। वे आत्मा की मुक्ति चाहते थे ताकि वो हवा या आग में मिल सके।
जबकि यहूदी दृष्टिकोण में भौतिक दुनिया और शरीर अच्छा था। तो जैसे ही पॉल मरे हुए आदमी के जिंदा होने की बात करता है,
वे उसे सुनना बंद कर देते हैं और मजाक उड़ाते हैं।
अब मैं यहाँ एक तीखा सवाल पूछना चाहती हूँ।
पूछिए।
अगर पॉल को पता था कि शरीर के जिंदा होने की बात सुनते ही ये भड़क जाएंगे, तो उसने बोला ही क्यों? एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के नाते क्या उसे ये हिस्सा छोड़ने देना चाहिए था?
एक सामान्य प्रश्न पूछने पर मैं हैरान हो जाता हूँ। मेरा व्यक्तिगत निरीक्षण हमेशा कहता है कि धार्मिक समाजों में शिष्य और शिक्षक एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब संदेश के मुख्य सत्य से समझौता करना नहीं है।
मतलब आप पैकेजिंग बदल सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं।
बिल्कुल, साझा आधार सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए होता है। पॉल के लिए पुनरुत्थान कोर मैसेज था, वो उसे नहीं छोड़ सकता था।
तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये भाषण पूरी तरह विफल रहा?
नहीं, अरियोपेगस का एक सदस्य डायोनियसियस और एक उच्च वर्ग की महिला दमारिस ने उसकी बात मानी।
एक परिषद के सदस्य का बदलना भी बहुत बड़ा प्रभाव था।
हाँ, हमें अपने विचारों को ऐसे शब्दों में रखना चाहिए जो सुनने वाला समझ सके, लेकिन मूल सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए।
बिल्कुल। अब जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी बिल्कुल नए विचार का सामना करते हैं, तो क्या हमारा बौद्धिक अहंकार हमें रोक देता है?
बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के युग में भी हम सब एथेंस के उन दार्शनिकों की तरह व्यवहार करते हैं जो सत्य को इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठता? ये सच में एक विचारणीय प्रश्न है।
आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर किन्हीं नए स्रोतों की गहराई में उतरेंगे।